दूसरा श्लोक देखना 13वां अध्याय का। श्री भगवान उवाच क्षित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षित्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानमतं मम। उपस्थित गो परमेश्वरजनो प्रभक्तिमती माताओं, प्रसंग यह चला श्रीमद भगवद गीता के 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान की वाणी है, श्री भगवान उवास, श्री भगवान बोले। आनंदकंद विश्वबंद सर्वांतरजामी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके लिए क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, मेरे प्यारे भाई अर्जुन सुन। क्या सुने? जो तेरे को कल बताया था, ख्याल है कि नहीं? इदम शरीरम कुंती क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कुंती नंदन, मेरे प्यारे भाई, इस शरीर को खेत कहा जाता है, इस शरीर को खेत कहा जाता है। एतद् जो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञः, इस खेत को जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। अब अर्जुन के मन में संशय हो गया कि भाई क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्रज्ञ तो अनंत हो जाएगा, क्यों शरीर अनंत है, अनंत खेत को अनंत शरीर जीव जानेगा। क्षेत्रज्ञ एक है कि अनेगा है? एक है। कैसे एक? कैसे अनेक होगा? अनेक कैसे एक होगा? देखो, भगवान कहते क्षेत्रज्ञ साबी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सब खेतों में रहने वाला, सब खेतों का मालिक मैं ही हूं। माम विद्धि ही जानी ही, मेरे को जान, या जाने क्षेत्रज्ञ, तो सब खेतों का मालिक मैं अकेला हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम जत, जस ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, तस ज्ञानम वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अभी भगवान क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बोध करा रहे हैं, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बोध करा रहा है। क्षेत्रम जानाते इति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जो जानता है उसका नाम। अब जब तक तुम क्षेत्रज्ञ को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा जन्म मृत्यु के प्रवाह रोकने वाला नहीं है। बोले हम तो क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो क्षेत्रज्ञ है, श्री कृष्ण को तो हम जानते ही है। जानते हो कि नहीं? श्री कृष्ण को जानते ही हो? बोले ठीक है, जानते तो किस रूप में जानते हो? नाम से जानते हो, क्रिया से जानते हो, संबंध से जानते हो, आकृति से जानते हो, प्रकृति से जानते हो, स्वरूप से जानते हो, कैसे तुम भगवान को कैसे जानते हो बताओ? कृष्ण को जानते हो ना? कृष्ण कौन है? अरे भला कृष्ण कहोगे गोपी, गोपिकाओं का जो है ना, क्या प्रेमी कौन? कृष्ण। अथवा वसुदेवम सुतम देवम, संबंध से जानते हो, क्रिया से जानते हो, अर्जुन के सारथी के रूप में जानते हो, अर्जुन के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में विद्यमान श्री कृष्ण को तुम जानते हो, धन्यवाद। और कैसे जानते हो? संबंध से जानते हो। अभी समझो श्री कृष्ण महाराज, जैसे आपका कोई बेटा, आपका कोई बेटा मामा के घर में रहेगा, आप अपने माँ के घर में गए बेटा को लेकर के, वहां से कोई पूछे बेटा किसका है, बाप के नाम पर परिचय होगा कि माँ के नाम पर? माँ के नाम पर परिचय होगा। तो संबंध से जाना है। कृष्णा अगर यदि मथुरा में रहे तो किसके रूप में जानेगा? आज यदि गोकुल में रहेगा किसके रूप में जानेगा? क्या संबंध है? जानते तो हो वसुदेवम सुतम देवम कंकर चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुणम, तो बोलते तो हो, जानते तो हो। भगवान कहते हैं जानते तो है मेरे को, क्रिया से अर्जुन के सारथी के रूप में मेरे को जानते हैं, बलराम के भाई के रूप में जानते हैं, काली मर्दन के रूप में जानते हैं, कंस को संहार करने वाला के रूप में जानते हैं, वसुदेव सुतम देव के रूप में जानते हैं, संबंध से आकृति से प्रकृति से विकृति से मेरे को जानते हैं, पर वास्तविक रूप में मेरे को कोई नहीं जानता है। मेरे तत्व के रूप में मेरे को कोई नहीं जानता है। बोले तत्व क्या, आपका वास्तविक रूप क्या है? तत्व है, तत्व क्या से मनुष्य नाम सहस्रेशु कर्चि जलते सिद्धे जलता सिद्धा नाम कर्शिन नाम व्यक्ति तत्व तो। तो भगवान कहते कोई एक बिरला पुरुष है मेरे को तत्व से जानता है। माने तत्व से जानना और अतत्व से जानना क्या मतलब हुआ? नाम रूप से जानना अतत्व है, नाम रूप के अधिष्ठान के रूप में जानना तत्व है, नाम रूप जिसमें कल्पित हुआ। जैसे घड़ा के को तुम जानते हो, एक घटा है आयम घटा है, घट को तुम जानते हो, अन्य बात तो घट किससे बना है? तो तत्व क्या चीज होगा? तो तुम मिट्टी के रूप में घड़ा को नहीं देखते, आकृति के रूप में घड़ा को देखते हो, आकार से नाम से रूप में घड़ा को जानते हो। जो जिस घड़ा को तुम जानते हो उसका कारण क्या है? मिट्टी। उपादान कारण क्या है? मिट्टी। ऐसे मिट्टी के रूप में घड़ा को देखना है कि घट के रूप में मिट्टी घड़ा को देखने का है? देखो संसार को देखने का दो तरीका है, एक कारण के रूप में, कार्य के रूप में। एक कारण के रूप में, कार्य के रूप में। तो कार्य के रूप में जगत को देखना है कि कारण के रूप में देखने का है? देखो जैसे समझो कार्य के रूप में प्रेम होता है, कारण के रूप में प्रेम नहीं होता है, याद रखना। कार्य के रूप में जगत में प्रेम है तुम्हारा, कारण के रूप में नहीं है। और समझो तुम्हारे पास कोई आभूषण है, आभूषण को तुम्हारा बेचने का है, और सोनार के पास ले गए, तो सोनार के पास जब ले गए तो सोनार को दिया भाई हमको ये बेचना है, तो सोनार के हाथ से जो है ना आभूषण गिर गया, टूट गया, तो तुमको दुख होगा कि सोनार को दुख होगा? दोनों को होगा। क्यों? परंतु बेचने वाला का हा हा कहेगा कि नहीं कि हमारा आभूषण टूट गया, टूट गया, तुमने ये कैसे कर दिया, क्या गिरा दिया? समझेंगे नहीं? बेचने के वो सोना नहीं देख रहा, आभूषण देख रहा है। आभूषण देखने वाला रोएगा, वो सोना देखने वाला नहीं रोएगा, याद रखना। सोना देखने वाला सोनार को तो सोना देखेगा, और बेचने वाला को आभूषण देखेगा। बेचने वाला को आभूषण देखेगा। तो तुम तो ऐसे जगत को देखने का तरीका देखो, तुम जगत को देखते हो, जगत को बनाने वाला को देखते हो, या जगत जिस कारण से बना है उसको देखते हो? जगत बना किससे? जगत का उपादान कारण क्या है? जगत का उपादान कारण है माया, और निमित्त कारण है ईश्वर, और जगत हुआ माया का कार्य। जगत जो है ना माया का कार्य है। तो माया है अभिन्न, माया है परिणामी उपादान कारण जगत का, माया का परिणाम ही जगत है। ये जगत को तुम देखते हो, नाम रूपात्मक जगत को देखते हो, परंतु नाम रूप जिसमें कल्पित है उसको नहीं देखते हो। जैसे आभूषण जिसमें कल्पित है उसको नहीं देखते हो, तुम कल्पित आभूषण को देखते हो। ये हार है, कटक है, कुंडल है, चूड़ी है, मरकी है, फलाना है, ढिमका है, इस रूप में तुम देखते हो, पर सोना के रूप में नहीं देखते हो। ऐसे जगत का जो कारण है, जगत जिसमें जिस अधिष्ठान में जगत भास रहा है, जिस अधिष्ठान में जगत देख रहा है, उस अधिष्ठान को तुम जानते नहीं। तो भगवान कहते हैं माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सब क्षेत्रों का मालिक मैं ही हूं, अतः संपूर्ण जो जगत है, नाम रूपात्मा जो जगत है, स्थावर जंगम उद्भिद जरायु आदि के रूप में जो जगत देख रहे हो, ये जगत कहाँ भासता है? कारण में, कारण अधिष्ठान में। तो अधिष्ठान को देखोगे अध्यस्त वस्तु का बाद हो जाएगा। नाम रूप में तुम्हारा बुद्धि अटके गए नहीं, नहीं तो नाम रूप में अटक गए ना, संसार में अटक गए तो अधिष्ठान को भूल जाओगे। तो जगत जब देखोगे तो जगत से तुमके भय होगा, सुख होगा, दुख होगा, राग होगा, द्वेष होगा, हर्ष होगा, सुख होगा। क्यों होगा? क्यों? जगत को तुमने सच्चा मान रखा है, जगत को सच्चा मान रखा है। तो सच्चा वस्तु से ही सबको दुख होता है, सुख होता है, राग होता है, द्वेष होता है। तो जगत सच्चा है कि मिथ्या है कि असत है? जगत कैसा है? मिथ्या है। हाँ देखा, ये वेदांत सुनने वाला की निरंतर सत्संग करने वाला का यही होता है। यानी बात जगत का दो स्वरूप है, एक अधिष्ठान में अध्यस्त के रूप में जगत को हम देखते हैं, यानी बात अध्यस्त के रूप में असत्य के रूप में जगत को देखते हैं। तो मिथ्या के मिथ्या वस्तु की अधिष्ठान जो है वो सत्य होता है, जो अध्यस्त वस्तु होता है मिथ्या होती है, अध्यस्त वस्तु मिथ्या होती है। जैसे देखो सुक्ति चांदी है, सुक्ति रजत अथवा रस्सी सर्प समझो। जो रस्सी है, रस्सी को तुम सर्प समझा, तो सर्प समझने से तुमको भय हुआ कि नहीं हुआ? और जो सुक्ति है, सीपी है, उसको जो तुमने चांदी देखा तो उसमें राग होगा कि नहीं होगा? चांदी में चांदी देखा तो राग होगा, और सर्प देखा को द्वेष होगा, भय होगा, मानने के लिए दौड़ोगे। तो क्यों ऐसा होगा? अधिष्ठान की अज्ञान से, रस्सी की अज्ञान से, अथवा सीपी की अज्ञान से। तो मिथ्या वस्तु को तुमने सच्चा समझा, सच्चा समझने से इसमें राग द्वेष हुआ, राग द्वेष हुआ से भय और भय हुआ और आसक्ति हो गई, राग हो गया। चांदी समझा किसको समझा? सीपी को चांदी समझा तो क्या होगा? राग होगा, उठाने दौड़ोगे। और रस्सी को सर्प समझा तो क्या होगा? द्वेष होगा, भय होगा, मानना दौड़ोगे। और जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो नायम सर्प, सर्प बाद हो जाएगा। अरे तो रस्सी तो सर्प के रूप में भाषा, अरे शुक्ति तो चांदी के रूप में भाषा है, तो मिथ्या चांदी है। तो वैसे आत्मा अज्ञान जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से जगत भास रहा है। तद ज्ञान न भाषते है, ये जगत जो दिखता है ना, क्यों दिखता है? अपने स्वरूप के अज्ञान से, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए जगत भास रहा है। और स्वरूप के ज्ञान होने से जगत बाधित हो जाएगा, बाधित होगा, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना हो? हाँ, बाधित हो जाएगा। क्यों? जगत जो तुमको, जगत को तुम हटा नहीं सकते हो। क्यों? जगत जगत माया का कार्य है, तो माया का कार्य को तुम बात कर सकते हो, तुम्हारा कार्य को तुम हटा सकते हो, नाश कर सकते हो। तुमने जो बनाया उसको तो मिटा सकते हो, परंतु माया का कार्य, माया का जो परिणाम है, माया के परिणाम को जो जगत है, ये जगत को तुम केवल बात कर सकते हो। क्या जगत बात कर सकते हो? बात क्या करोगे? जगत में तो सत्यता बुद्धि है, जगत में है ये संसार सत्य है, जो भास रहा है ना, भास रहा है ना, संसार सत्य है, नित्य है, सुखरूप है। ऐसे जो मिथ्या वस्तु में तुम्हारे जो ज्ञान हो गया, सुख बुद्धि हो गया, सत्यता बुद्धि हो गई, इस सत्यता बुद्धि को तुम बात कर सकते हो। क्यों? नायम 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 सत्य, ये सत्य नहीं है। क्यों? भासमानत्वात्, ये भासमान है। जैसे रस्सी में सर्प का भासमान है, सुक्ति में चांदी का भासमान है, जैसे मरुभूमि में जल का भासमान है, आकाश में नीलिमे का भासमान, ऐसे आत्मा में जगत भास रहा है, इसीलिए जगत मिथ्या है। जो वस्तु भासमान होता है वह मिथ्या होती है। है बात, जो वस्तु भासमान है ना वो मिथ्या है, देखने भर के लिए होता है। जैसे तुम सो गए, सोने के बाद में सपना आया, सपना में चोर आया, डकैत आया, तस्कर आया अथवा कोई और किसका जन्म हुआ, सपना में तुम देख रहे हो, तो देखने से जैसा वस्तु देखोगे ऐसा तुम्हारे सपना में मन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो सपना में सपना का दृश्य को सत्य समझोगे कि नहीं समझोगे? हाँ, जिस समय तुम तस्कर को देखा, घर में चोर घुसा हुआ देखा, उस समय तुमको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको भगाने के लिए कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? डंडा कहाँ से लाओगे, पिस्तौल कहाँ से लाओगे? तो सपना में तुम्हारा चोर भी आया है, पिस्तौल भी आया है, डंडा भी आया है, पर सब के सब कैसा है? जब चोर मिथ्या है तो डंडा भी मिथ्या है, तो मिथ्या कब होगा? जागने के बाद। सपना में नहीं होगा, सपना में तो सच्चा है। सपना में सपना का शोर भी सच्चा है, सपना का डंडा भी सच्चा है, सपना का तलवार भी सच्चा है। क्यों भगाने के लिए जा रहे हो? जब निद्रा खुल गई तो जाग गया तो ऐसे जगत जो है ना, जगत भी ऐसे समझ में ना, अज्ञान अवस्था में जगत भास रहा है। ये जो जगत भास रहा है ना, कब भास रहा है? अज्ञान अवस्था में, अज्ञान काल में जगत भास रहा है। जब तक अज्ञान है तो जगत कैसे रहेगा? सच्चा लगेगा। जगत अज्ञान अवस्था में सच्चा लगेगा और ज्ञान अवस्था में बाधित हो जाएगा। तो बाधित होने पर भी जगत जो है, जैसे जगत का हमने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवा ब्रह्म भी ना पर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवा ब्रह्म स्वरूप ही है। इस ज्ञान के काल में वो जगत जो रहेगा या नहीं रहेगा? जगत मिथ्या को हमने बोल दिया तो मिथ्या होने से कैसा होगा? जगत जो है जैसा का वैसा ही रहेगा। केवल सत्यता बुद्धि जो जगत में हुई थी ना, ये सत्यता बुद्धि का बाद हो जाएगा। ऐसे भगवान कहते मेज को तुम जानते हो, मेरा नाम के रूप में जानते हो, कृष्ण के रूप में जानते हो, वसुदेव के बेटा के रूप में जानते हो, गोपी वल्लभ के रूप में जानते हो, सुदामा के मित्र के रूप में जानते हो। जानते तो हो, पर ये जानना जानना नहीं है, ये जानना, क्योंकि तुम क्रिया से जानते हो, संबंध से जानते हो, रूप से जानते हो, आकार से जानते हो, प्रकार से जानते हो, नाम से जानते हो, परंतु ये जानना वास्तव में जानना नहीं है। वो जानना क्या है? तत्व से जानना। क्षेत्रज्ञ जो मैं हूं, वो क्षेत्रज्ञ के रूप में मेरे को जानो। सब क्षेत्रों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, उसके रूप में मेरे को जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है वो मेरे को जानो। तो मेरे को जानने से तुम्हारा कल्याण होगा, मानने से नहीं होगा, याद रखना। कल मान बैठोगे, मानने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, जानने से कल्याण होने वाला है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से, परंतु मानने मात्र से नहीं होगा। तो सुनना, मानना, जानना, ये तीन बात याद रखना। पहले वेदांत वाक्यों का श्रवण करो, शास्त्र का श्रवण करो, क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ को जानने वाला कौन है, इस बात को पहले श्रवण करो। श्रवण के बाद में इसको स्वीकार करो, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक इसको मान लो। मानने के बाद में विचार करो, मानने के बिना विचार नहीं होता है। मानोगे इस बात को, माना हमारी बात को आप मानो, विचार करके देखो बोलता है कि नहीं व्यवहार में। पहले मेरा बात सुनो, फिर विचार करो, फिर बाद में बात करना। तो पहले सुनो, वेदांत वाक्यों का श्रवण करो, वेदांत वाक्य से सदा रमनता है, सदा रमन करो वेदांत वाक्यों में। तो वेदांत क्या से जाए? आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जो है ना, ये वेदांत वाक्य है। आत्मा के विषय में सुनना, श्रवण करना, मनन करना और निध्यासन करना। तो आत्मा बारे श्रोतव्य, क्षेत्रज्ञ बारे श्रोतव्य, क्षेत्रज्ञ कौन है? अर्जुन के सामने खड़ा हुआ भगवान कहते, मैं ही सब खेतों में रहने वाला हूं, मैं सब खेतों में रहने वाला क्षेत्र का मालिक मैं ही, तुम क्षेत्र का मालिक नहीं हो। ये जो शरीर रूपी खेत है, खेत का मालिक तुमने अपने आप को मान करके बैठे हो ना, ये खेत का मालिक तुम नहीं हो, इसका मालिक कोई और ही है। माया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ने न मत्स्थानी सर्वभूतानी न साम तेजु अवस्थित न समस्थानी भूताने पश्चिम जगम शरम। कितना बढ़िया भगवान भारत ने बताया, माया तत्म इदम सर्वम इजाम परिदृश्यमानम नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम रूपात्मक जो जगत है, इस जगत में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं। तो नाम रूप को बात करो तो नाम रूप की बात करने के बाद नाम रूप का जो आधार है, नाम रूप का जो अधिष्ठान है, नाम रूप का जो नाम रूप जिसमें अध्यस्त है उसका ज्ञान होगा। उसका ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं, अज्ञान की निवृत्ति बिना संसार की निवृत्ति नहीं, दुखों की निवृत्ति नहीं। दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति बताते, दुखों की निवृत्ति तो होती है प्रतिदिन, प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में तुमको दुखों की निवृत्ति होती है। शराब पीने से दुखों की निवृत्ति होती है, गाजा पीने से दुखों की निवृत्ति होती है, निशा करोगे दुखों की निवृत्ति होती है, समाधि में दुखों की निवृत्ति होती है, परंतु अत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है, हमेशा के लिए निवृत्ति नहीं होती है। अनिवार्य संसार की निवृत्ति रोज होता है सुसुप्ति अवस्था में। संसार की जो निवृत्ति है ना सुसुप्ति अवस्था में होती है कि नहीं होती है? तो जागृत में कहां से आता है संसार? तो दुखों की निवृत्ति होती है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। कार्य कारण में लय हो जाने का नाम निवृत्ति है। कार्य को जैसे आभूषण है, आभूषण को गला दिया तो आभूषण कहां चला गया? सोने में गया, लीन हो गया, नाश नहीं हुआ। क्यों? उसी सोना से तुम दूसरा आभूषण बना सकते हो कि नहीं? तो कार्य कारण का कारण में लीन हुआ था, फिर नामांतर में, गुणांतर में, कार्यांतर में फिर उत्पन्न हो गया, तो इसका नाम है निवृत्ति। अब ऐसा करो जो कार्य और कारण दोनों के साथ, दोनों के दोनों एक साथ निवृत्त हो जाए। आप सोना के क्या करोगे? भस्म सुवर्ण भस्म बना दो, सुवर्ण भस्म खाया कि नहीं खाया? सुवर्ण भस्म नहीं खाया? आयुर्वेद में पूछो आयुर्वेद वाला को, आयुर्वेद वाला सुवर्ण भस्म बेचता है, सुवर्ण को भस्म बनाता है, राख बना देता है। अभी तक कितना तोला होगा? अभी तक 30,000 होगा तोला। कम हो गया 20,000 तोला सुवर्ण भस्म। तो भस्म जो बना देगा उससे फिर सोना आभूषण बनेगा? तो इसका नाम है अत्यंतिक निवृत्ति। जो आभूषण आपके पास है ना, तो आभूषण सोना के पास ले जाओ कि भाई ये आभूषण हमको पसंद नहीं आया, इसको इस डिजाइन से बनाओ, तो डिजाइन तो बन जाएगा, नाम रूप बन जाएगा, बदल जाएगा, तो सोना तो वही का वही आएगी नहीं? तो हमेशा के लिए तो आभूषण नहीं मिटा ना, नाम रूप बदल दिया। परंतु ऐसा ऐसा करो तो नाम रूप और सोना दोनों के दोनों एक साथ मिट जाए, तो क्या करोगे? भस्म बना दो। तो भस्म बना से भस्म से फिर आभूषण बनेगा? बनेगा ना, क्यों? तो इसका नाम है अत्यंतिक निवृत्ति। कार्य और कारण दोनों को मिटा देना। ऐसे तुम्हारे जो प्रतिदिन का जो कार्य कारण भाव है, सुसुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में दुखी हो और सुसुप्ति अवस्था में सुखी हो, तो जागृत अवस्था का दुख कहाँ गया, सुसुप्ति अवस्था में सुख कहाँ से आया है? विचार करो, सुसुप्ति अवस्था में क्यों जाते हो? दुख के लिए जाते हो, सुख के लिए जाते हो? तो सुख का साधन तो तुम्हारा घर में है, बाहर ही है, टीवी है, फलाना है, ठेमका है, सब दुनिया भर के सुख का साधन तो बाहर ही है, सुख के लिए कैसे सुसुप्ति में चला गया तुम छोड़ करके यहां? अरे सुख के साधन हमारे दिखाते हो कि नहीं? किसी के घर में जाते हो तो तुम दिखाते, यही बनाया, यही बनाया, यही बनाया, ऐसा 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 साधन है हमारे पास, हमारा ऑस्ट्रेलिया से हिल आया, इटाली से हिल आया, फलाना से हिल आया, अमेरिका से हिल आया, क्यों दिखाते हो? अरे टेम्पररी जहाज दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? तुम उसमें सुख माना है तभी दिखाओगे ना, उसमें माना है तब नहीं दिखाओगे। आप वही सुख का साधन जो है जब सोते हो, छोड़ करके सुख सोने जाते हो कि उसको ले करके जाते हो? छोड़ करके क्यों जाते हो? सुसुप्ति में क्यों जाते हो? सुख के लिए, दुख के लिए? तो सुख वहां कहां से आएगा जब छोड़ करके सब अपना सुख होता है? तो अपना सुख जागृत में नहीं मिलता है? देखो जागृत का, जागृत में सुख का जो साधन है ये साधन है। जागृत में जितना यह है ना सामान है वो सुख का साधन है। अभी देखो एक बात, तुम्हारा एक बेटा विदेश में है समझो, कल्पना करो 10 साल हो गया नहीं आया, चिट्ठी आया मैं फलाना दिन आ रहा हूं, तो आपको चिट्ठी पा करके आपको खुशी होगी कि नहीं? सबको बोलते फिर हो गया हमारा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, बहुत दिन बाद बेटा आ रहा है, बहुत दिन और बेटा आ रहा है, सब संबंधियों को समाचार दोगे कि नहीं? क्यों बेटा आ रहा है तो बेटा में तुम्हारा सुख बुद्धि हुई कि नहीं? अच्छा जिस दिन आने का तारीख दे दिया उस दिन तो हवाई अड्डे में जाओगे कि नहीं लेने के लिए? और उसे उसक करके देखोगे कि नहीं? हवाई अड्डा ही उतरा ही उतरा है, मेरा बेटा कौन है, बेटा कौन है, उसक उसक करके देखोगे कि नहीं? देखा आगा यदि तुम्हारे सामने आए तुम्हारा चरण सो स्पर्श करे और तुमको कितना सुख मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा अब वो बेटा जब घर में आया उतना सुख जो हवाई अड्डा में सुख मिला था बेटा से मिलने से, वो सुख तुमको घर में आने के बाद एक घंटा बाद मिलेगा, कम हो जाएगा? अरे 2-4 दिन बाद में और कम हो जाएगा, और 1 महीना बाद? आप जो भी बेटा कहे पिताजी आप हम विदेश नहीं जाएंगे यहां बैठे रहेंगे तो उसमें सुख मिलेगा दुख मिलेगा? आप जो भी कहे पिताजी आप तो कमा करके रखा है, इसमें हम खर्चा करेंगे, होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, डांस में जाएंगे, आप पैसा दो तो दुख क्यों होगा? उसी से तो आपको हवाई अड्डा से जब मिले तब सुख मिला था, जब रास्ता में आया बात करते करते उसमें सुख मिला, 2 दिन बाद में आपको सुख मिला, और तो सुख धीरे धीरे कम होता गया कि नहीं होता गया? और जब पैसा मांगने लग गया तो तब सुख होगा ना बहुत? तो जैसे देखो पहले सुख जो बेटा से आया बाद में सुख, वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है अभी, वो बेटा से सुख क्यों नहीं आ रहा है? हवाई अड्डा में है बेटा से मिलने से तुमको सुख मिला कि नहीं मिला? वो सुख क्या बेटा से आया कि आप हवाई अड्डा से मिला उस समय जो सुख आया वो सुख बेटा से आया? बेटा तो अभी भी है, अभी सुख क्यों नहीं आया जब बेटा से आया है? तो बेटा से सुख नहीं आया, वो बेटा से मिलने का जो तुम्हारी आकांक्षा थी ना, मिलो मिलो मिलो, आकांक्षा की निवृत्ति हो गई। आकांक्षा की निवृत्ति हो जाने से वो सुख जो आकांक्षा थी ना मिलने की, तो मिलने की आकांक्षा की निवृत्ति हो गई। पहले आकांक्षा थी ना सुख की वृत्ति के बाहर गया, अंतकरण की वृत्ति बाहर गया, बाहर अगर बेटा अगर हुआ तो उस समय का सुख मिला, धीरे धीरे वृत्ति अंतर्मुखी हो गया और होते होते मन में अंदर चला गया, और जाने के बाद में अभी बेटा को क्या देखते हो? दुख के रूप में देखते हो कि नहीं? बेटा तो अभी विदेश जा बहुत हो गया, गया तेरे लिए देश ठीक नहीं है, जा विदेश चले जा। तो पिताजी विदेश बेटा चाहता है कि नहीं चाहता है? क्यों? तो जैसे पुत्र के मिलन से तुमको सुख मिला, वो सुख पुत्र के मिलन से नहीं, संयोग से नहीं, सुख तुम्हारे अंतकरण के अंतकरण में स्थित जो अंतकरण की वृत्ति के शांत होने से सुख मिला। अंतकरण की वृत्ति जो बेटा 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 करके बहिर्मुखी हो गई थी ना, वो बहिर्मुखी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो गया। तो अंतर्मुखी चित्तवृत्ति आनंदम प्रतिबिंब थी, अंतर्मुखी चित्तवृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति हो गई। तो आनंद को तुम सोचा कि हमारा बेटा से आया, तुमने क्या सोचा? बेटा से है। वास्तव में बेटा से आने से अभी भी तो है, बेटा तुम्हारे सामने है, अभी क्यों नहीं आनंद आ रहा है? जो हवाई अड्डा में बेटा था, रास्ता में बेटा था, घर में आया बेटा था, वही बेटा अभी भी है। पहले अभी उसी बेटा से आनंद क्यों नहीं आ रहा? कभी कल्पना किया पहले कहां से आया? विषय की मिलन की जो आकांक्षा थी, वो आकांक्षा की निवृत्ति हो गई तो ये आनंद की अभिव्यक्ति हुई थी। अब ये विषय की आकांक्षा नहीं है, इसीलिए बेटा से आनंद, विषय से आनंद नहीं आ रहा है। तो समझ लेना है, जो संसार में सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, ये बाहर से नहीं आता है। तुम्हारा अपना ही सुख, अपना ही आनंद, अपना शांति, वो तुमको देखते हैं बाहर, हा भीतर, और समझ लेते क्या बाहर। तो बाहर से व्यक्ति से नहीं, ऐसे सुषुप्ति अवस्था में तुम जो जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में विषय को छोड़ करके भीतर जाते हो कि विषय को लेकर जाते हो? तो छोड़ करके जाने से आनंद कहां से आएगा? फिर छोड़ करके विषय तो घर में छोड़ दिया और सो गया, दरवाजा बंद करके, कमरा बंद करके, बिजली बंद करके, क्यों हमको सोने दे? क्यों सोने देगा? सोने क्यों देगा? बोला हमको सोना है। क्यों? परेशानी नहीं करने का, लाइट बंद करो, हल्ला मत करो, हमको एकांत में सोने दो। तो सोने जा रहे हो तुम, एकांत में चला गया, एकांत ऐसे जगह में 500 कोसों के भीतर चला गया, 5 दरवाजा तूने बंद कर दिया, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय चारों कोष को बंद करके तुम कहां चला गया? आनंदमय कोष में चला गया। तो आनंद की अभिव्यक्ति होती है, आनंदाति खोले मानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जाताने जीवन्ते आनंदम प्रहन्ते अभिषेक मिशन्ते आनंदम ब्रह्म। आनंदमय कोष में तुम चले गए, तो आनंद को मैं कोष से तुम जागृत में आते हो, फिर भीतर जाते हो, बाहर आते हो, भीतर जाते हो, बाहर आते हो, भीतर जाते हो। तो आनंदमय कोष के अंदर जो आनंद है, वो आनंद की अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में होती है। सुख की अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में होती है, जागृत अवस्था में नहीं होती है। नहीं होती है कैसे नहीं होती है? वो जो तुम जो है ना, जो सुषुप्ति में थे, वो जो बाहर जागृत में वही तो तुम हो। अरे भाई, जागृत सुषुप्ति अवस्था में तुमने आनंद का अनुभव किया, तो आनंद का अनुभव करने वाला हो तो जागृत में तो वही है कि दूसरा तीसरा है? तो अभी जागृत अवस्था में तुमका आनंद क्यों नहीं आ रहा है? जागृत अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था में तुम आनंद स्वरूप थे, जागृत अवस्था में भी तुम तो वही हो, फिर तुम्हारे को अभी जागृत में दुख कहां से आया? कहां से टपक पड़ा दुख? कहां से आया राग द्वेष आदि? कहां से आया संसार? कहां से आया ममता आसक्ति? कहां से आया अहंकार ममकार? कहां से आया? वही तो तुम हो सुषुप्ति के रहने वाला। यह आरोपित है, वास्तव में आया नहीं, तुमने आरोपित कर लिया, आरोपित धर्म है ये। और सुषुप्ति अवस्था अनारोपित धर्म है, वहां कोई किसी वस्तु का आरोप नहीं होता है। वहां तुम सुख से सोते हो ना सुषुप्ति अवस्था में, वो किसी व्यक्ति का ममता का अहमता ममता आसक्ति ये कुछ भी नहीं रहता, सब बाहर रह जाता है। तो जब जागृत सपना सुषुप्ति से बाहर आओगे तो ये मेरा 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 करोगे कि नहीं? सुषुप्ति अवस्था में मेरा मेरा करते हो? क्यों? अरे मेरा मेरा करने का साधन मन था, मन नहीं रहता है ना, मेरा मेरा करने के लिए साधन नहीं है तुम्हारे पास। ये जागृत में मेरा मेरा करने के लिए साधन है क्या? मन। मन एवं मनुष्य नाम कारण मंद मोक्ष बंद विषय आसक्त मुक्त निर्विषय मन बोला कि नहीं? भादर आवाज सुने होंगे आप लोग, है नहीं बात? ये मन जो है सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है कहाँ? अज्ञान, अपने कारण में, ज्ञान में। और जागृत अवस्था में फिर बाहर निकल आता है। तो सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करने वाला भी जागृत में भी वही है व्यक्ति, वही आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है। फिर क्षेत्रज्ञ को इस अवस्था में दुख आता है, इस अवस्था में राग देश होता है, इस अवस्था में हर्ष रोग होता है, इस समय जरा व्याधि आती है, कहां से आता है? ये आरोपित धर्म है, आरोपित आरोप कर लेता है, देह का धर्म को आरोपित करते हैं, रोगी हो जाता है। स्थूल हो हम किशु हम, हाँ मैं स्थूल हूँ किशु हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ये सब जो है ना इंद्रियों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म, व्यवहार में तुम आरोप करके दुखी होते हो, और सुसुप्ति अवस्था में साथ बाहर ढेकल दे करके दरवाजा बंद कर देते हो। जा सुसुप्ति अवस्था में जाते हो कि नहीं, तो क्या करते इसको? और अन्नमय कोष का धर्म, अन्नमय कोष के पहले दरवाजा बंद कर देते जाओ तुम, फिर प्राणमय मानमय विज्ञानमय आनंदमय कोष को बाहर ढक्कल देकर रह देते हो, फिर तुम अपना अकेला सो जाते हो। जो सुसुप्ति में आनंद का अनुभव करने वाला हो, वही जागृत में ही आनंद का अनुभव करने वाला हो। जागृत में जैसे तुमको क्षेत्र का कह जाता है अनिवार्य, जागृत में क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ, वही तुम क्षेत्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में भी हो। क्यों, कैसे मालूम पड़ता है कि हम वही सुसुप्ति अवस्था वाला जो जागृत में आए, कैसे मालूम पड़ता है? अरे तुम प्रतिदिन अनुभव करते हो ना, मैं सुख से सोया, रात को नींद बड़ी आई है, बड़े सुख से सोया, आनंद से सोया, तो आनंद से अनुभव करने वाला तो जागृत में आया कि नहीं आया? तो जागृत में भी वही तो बोलता है सुसुप्ति अनुभव करने वाला, सुसुप्ति में आनंद का अनुभव करने वाला वही जागृत में भी वही है। जो तीन व्यक्ति नहीं है, जो स्वप्न में है, जो स्वप्न में है वो जागृत में है, वही सुसुप्ति में है। तीनों अवस्था में एक ही मछली घूम रहा है। बड़ी नदी होती है ना, बड़ी नदी है, बड़ी बड़ी मछली होती है ना, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, बीच में घूमता रहता है। तो तुम भी कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुसुप्ति में घूमते रहते हो। जागृत में थक जाते हो तो सपन में जाते हो, सपन में थक जाते हो सुसुप्ति में जाते हो, सुसुप्ति में आनंद में गुप्पा होकर के फिर बाहर आ जाते हो। चलो अभी बहुत हो गया, पूरा हो गया, नींद पूरी हो गई। तो नींद पूरी हो गई का मतलब क्या है? आनंद का खा करके, आनंद का अनुभव करते करते तुम थक गए, चलो अभी बाहर दुख का अनुभव करो। तो दुखी होने के लिए जागृत में आते हो, क्यों? दुख का अनुभव करोगे तो सुख का कीमत होता है, दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का कीमत नहीं होता है। इसीलिए तो नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। आदमी सोते हैं ना, जो नींद नहीं आते तो क्या करते हैं? गोली खा करके नींद भी आते ना, नींद की गोली, नींद आने के लिए गोली नहीं खाते हैं। क्यों? अरे अवस्था है, कैसे आती है, खाना पड़ता है। जागृत में तो दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं ना, जागृत जागते जागते थक जाते हैं ना, नींद नहीं आ रहा, नींद चलो एक गोली खा लो, आज वो गोली भी नहीं मिलता सुना। तो ऐसे जो जागृत सपना सुसुप्ति तुरिया, ये आत्मदेव की पुरिया, आत्मदेव भी चारों पूर्व में घूमता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत पूर्व, स्वप्नपुर, सुसुप्तिपुर, फिर तुरीयपुर, ये चारों में घूमता है। कौन? आत्मदेव, समझोगे नहीं? तो जागृत में थक जाए स्वप्न में चला जाएगा, स्वप्न में थक जाए सुसुप्ति में चला जाएगा, सुसुप्ति में थक जाए तुरीय में पहुंच जाएगा, और तुरीय में पास पड़ा रहेगा। तो क्षेत्र का प्रभु परमात्मा भगवान कहते क्षेत्र इन खेतों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मेरे को जान, मेरे से भिन्न क्षेत्र का कोई है नहीं। क्या मया तथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, हे अर्जुन, हे मेरे प्यारे भाई, तू समझ लेना, सुन लेना, कान खोल करके, मेरे द्वारा सारा संसार व्याप्त है, मेरे सिवाय दूसरा क्षेत्र के नाम की कोई वस्तु है नहीं। मया तथम इदम सर्वम, अर्जुन ने पूछा, महाराज तुम तो हमारे सामने खड़े, तुम संसार में कैसे व्याप्त हो? सब में तुम तो मेरे सामने खड़ा हो। जो व्यक्ति सामना आमना सामना हो और वो कहते मैं सब में व्यक्त हूं, तुम व्यक्त नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? शंका होगी कि नहीं, तुम कैसे व्यक्त होगा? तो भगवान कहते शंका मत कर, मैं जो कहता हूं उसको सुन ले, अपने बुद्धि को ताक में रख दे। बोले कैसे व्यक्त हूं, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरा दो स्वरूप है, ये व्यक्त मूर्ति स्वरूप एक अव्यक्त स्वरूप। वस्तु का दो स्वरूप होता है, एक कार्य के रूप में कारण के रूप में, व्यक्त के रूप में अव्यक्त रूप में, हाँ बात। तो मेरा एक स्वरूप अव्यक्त रूप में है, अव्यक्तादी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन तत्र का परिदेवना। ये सारा संसार भी भूत जो है ना उत्पन्न होने से पहले अव्यक्त रहता है, उत्पन्न हुआ व्यक्त हुआ, फिर जब कारण में लीन होगा अव्यक्त हो जाएगा। ऐसे मेरा दो स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप अव्यक्त स्वरूप। तो अव्यक्त रूप में मैं जगत में व्यक्त हूं और व्यक्त रूप में तेरे सामने खड़ा हूं। वो कैसा जो दृष्टांत देते ना, जैसे मेहंदी की पत्ती है ना, मेहंदी हाथ में लगाते ना मेहंदी, तो मेहंदी की पत्ती कैसा दिखता है, हरा दिखता है पीला दिखता है? मेहंदी की पत्ती हरा दिखता है, तो उसके अंदर पीला क्यों नहीं दिखता? तो मेहंदी की पत्ती पीला होता है ना, हाथ में लगाते तो पीला होता है कि नहीं होता है? तो जैसे मेहंदी की पत्ती में पीलापन अव्यक्त रहता है, दिखता है हरा और लगाते पीला के लिए पीला, ऐसे जैसे मेहंदी के पत्ते में पीलापन छिपा रहता है, ऐसे जगत के अंदर जो परमात्मा अव्यक्त रूप में विद्यमान है। बोलो बोलो, सर्वत्र व्यापक है। तो जैसे मेहंदी के बात में लाली लखी न जाए, ऐसे परमात्मा जगत के अंदर जो व्याप्त है देखने में नहीं आता है। बिजली के तार में बिजली देखती है? बिजली के जो तार है तार में बिजली देखती है क्यों, है कि नहीं? तो देखती क्यों नहीं? तो क्या हाय कैसे मालूम पड़ा? ये लाइट जलता है कि नहीं? तो लाट जलता है तो लाट क्यों जलता है? कारण था तब जलता है, और कारण न हो तो जलेगी? तो ठीक इसी प्रकार कहते हैं, जैसे कार में कारण बिजली अव्यक्त है, ऐसे जगत के अंदर परमात्मा और तुम व्यक्त हो कि अव्यक्त हो? व्यक्त है। अव्यक्त अव्यक्तादी भूतानि, ये संसार उत्पन्न होने से पहले कहाँ रहता है? कारण के रूप में। जो कारण के रूप में रहे उसको अव्यक्त कहते, जो कार्य के रूप में आया वो व्यक्त व्यक्त कहते। घड़ा मिट्टी में अव्यक्त के रूप में है, जब बन गया तो आभूषण सोना में कैसे रहेगा? व्यक्त की अव्यक्त अव्यक्त के, क्योंकि एक ही सोना में तुम कुछ भी बनाओ, हार बनाओ, कड़क बनाओ, कुंडल बनाओ, मार्की बनाओ, बीटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो जब तक नहीं बनाओगे तब तक उसमें सब अव्यक्त है, और बनाओगे तो ऐसे जगत उत्पन्न होने से पहले कहाँ है? कारण में। किस रूप में रहता है? अव्यक्त रूप में। जब बगैर जगत बना, इसीलिए पंचदशी में आया अनिवार्य सिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित तमोरज सत्वगुण प्रकृति दिव्यासा अनिवार्य सिदानंद माया ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सिदानंद एक एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। सिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित, इसका प्रतिबिंब पड़ा किसी प्रकृति में। सिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित तमोरज सत्वगुण प्रकृति दिव्यासा, जब प्रकृति में प्रतिबिंब पड़ा तो प्रकृति दो भाग हो गया, एक का नाम माया, एक का नाम अविद्या। तो माया में प्रतिबिंब पड़ा तो वो बन गया ईश्वर, माया बिंब पोषित काम था सर्व का ईश्वर, और अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा वो बन गया जीव, वो बन गया जीव। तो जीव और ईश्वर और ब्रह्म में भेद क्या है? अरे ब्रह्म का प्रतिबिंब इसमें आया, उपाधि की भेद है। वास्तव में सब उपाधि को मिटा दोगे तो कौन रहेगा? अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म रहेगा। ये ब्रह्म के ज्ञान से, क्षत्रिय के ज्ञान से ये तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति के बिना अज्ञान के निवृत्ति के बिना क्या नहीं होगा? अरे अज्ञान की निवृत्ति होगी तब तो अविद्या की निवृत्ति होगी, तब मोक्ष होगा ना। मोक्ष के लिए अविद्या की निवृत्ति चाहिए ना। अविद्या निवृत्ति मोक्ष। हरिओम हो गया भाई, मोक्ष हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।